हेलो, मैं हूँ कहानी वाली कुड़ी। स्वकथा में सुनिए अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट का भाग 17। 500 वर्ष की यात्रा। आज एक और पल मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। 1969 के शुरू के दिनों की एक रात का दूसरा पहर, टेलीफोन की घंटी बजी। मेरे बेटे का ट्रंक कॉल था बड़ौदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से। मेरे चिंता भरे पत्रों में उसकी आवाज थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा, बहुत दिनों बाद सुनी उसकी आवाज। मेरे कानों से होकर मेरे रोम रोम में उतर गई। गर्मी हो या सर्दी, मैं बहुत से कपड़े पहनकर नहीं सो सकती। सो रही थी जब ये फोन आया। उसी तरह रजाई से निकलकर फोन तक आई थी। लगा शरीर का मांस पिघलकर रूह में मिल गया है और मैं प्योर नेकेड सोल वहां खड़ी हूँ। अंधेरे में जैसे बिजली चमक जाती है। ख्याल आया, मैं एक साधारण माँ अपने साधारण बच्चे की आवाज सुनकर अगर इस तरह एक हसीन पल जी सकती हूँ तो माता तृप्ता की कोख में जिस समय गुरु नानक जैसा बच्चा पल रहा था, माता तृप्ता को कैसा नैसर्गिक अनुभव हुआ होगा। ये वर्ष गुरु नानक के पंच शताब्दी उत्सव का वर्ष था। मुझे एक प्रकाशक की ओर से एक लंबा काव्य लिखने के लिए कहा गया था, पर मैंने मना कर दिया था। लिखती तो वो काव्य मेरे लहू के उबाल में से उठा हुआ ना होता, पर अब ये पल जैसे मेरा हाथ पकड़कर मुझे 500 वर्षों के अंधेरे में से ले जाकर उस माँ के पास ले गया जिसकी कोख में गुरु नानक था। सारा अंधेरा एक मध्यम सी लौ में भीग गया, रोशनी से गीला ये पल, और फिर न जाने कितने दिन और कितनी रातों में उसकी महक बस गई। इन्हीं दिनों में मैंने एक ग्रीक कहावत को जिया था, All wood can be made into a cross, और कविता लिखी गर्भवती। माता तृप्ता के गर्भ के 9 महीने जैसे उनके 9 सपने थे। फिर पंजाब के अखबारों ने बुरा भला कहा और इस कविता को बैन कर देने के लिए पंजाब सरकार से आग्रह किया। वो सब सुना अजीत दैनिक पत्र में किसी कृपाल सिंह कसेल के लेखों ने मुझे कामुक चींटी कहकर यहाँ तक लिखा कि पवित्र गुरु नानक पर मुझे कविता लिखने का अधिकार ही नहीं था। पंजाबी साहित्य की बुजुर्ग आवाजें चुप थीं, उनकी जिम्मेदारी शायद चुप रहना ही थी, पर मैं अकेली नहीं खड़ी थी। ये हसीन पल मेरे साथ खड़ा था। हम दोनों हैरान थे पर उदास नहीं। देखा, गुरु नानक नाम को बहुत सारे हाथों ने लाठी की तरह पकड़ा हुआ था और गुस्से से बाहें फैलाई हुई थीं। वो लाठी मेरे चोट मार सकती थी पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। पर इस पल ने अपने हिस्से की लकड़ी को गढ़कर उसका क्रॉस बना लिया था, और ये पल जिसे क्रॉस नसीब हुआ था आज मेरे सामने क्राइस्ट की तरह मुस्कुरा रहा है। एक लेखक की ईमानदारी। नेपाल के नेवारी लेखक सायमी धूसवां जब दिल्ली में अपनी एम्बेसी के कल्चर सेक्रेटरी बनकर आए, कुछ ही मुलाकातों में लगा कि उनके अंतर का लेखक उनके डिप्लोमेटिक ओहदे से बड़ा है। उनके अंतर का ये विरोधाभास उनके लिए सुख कर नहीं था। ये और अपनी अन्य निजी उलझने उन्होंने एक दोस्त की तरह मेरे साथ बांटी। जब भी परेशान होते मुझसे मिलने चले आते, नहीं तो फोन जरूर करते। खैर, एक दिन मैंने उनकी बिल्कुल निजी एक उलझन के बारे में एक कहानी लिखी, अदालत। उन दिनों मैं हिंदी में अपनी कहानियों की एक किताब कंपाइल कर रही थी। पंजाब से बाहर के पात्र और मैंने इस किताब के लिए जो 18 कहानियां चुनी थीं, उनमें से एक ये अदालत भी थी। किताब प्रेस में चली गई और मैंने ये खबर दूसवां साहब को दे दे। पर कहानी के नीचे उसका पात्र जिस देश का था उस देश का नाम दिया गया था, सो अदालत कहानी के नीचे नेपाल का पात्र लिखा हुआ था। धूसवा ने मुझसे कहा कि कहानी के नीचे मैं नेपाल शब्द को काट कर कुछ और लिख दूं, नहीं तो एक डिप्लोमेटिक होने के नाते उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मैं ये कभी गवारा नहीं कर सकती थी कि उन्हें कोई तकलीफ हो, इसलिए उनके कहने के अनुसार नेपाल की जगह आसाम लिखवा दिया। किताब छप गई, उन्होंने भी देखी और मुझे एक नोट लिख कर दिया कि जब मैं अपनी जीवनी लिखूं तब उनका ये नोट जरूर शामिल कर लूं। वो नोट ये है, ये कहानी धूसवा की है, पर सांस्कृतिक सहचारी एक माननीय इतना बुजदिल और कायर है कि इस कहानी को अजनबी बनाने के लिए अपने देश नेपाल को भारत का एक राज्य आसाम बनाने की उसने हामी भर दी। सायमी धूसवा 16/11/97। उस दिन धूसवा मेरी दृष्टि में और भी ऊंचे हो गए। ये उनके अंतर के लेखक की ईमानदारी का आग्रह था। मैंने आदर से सिर झुका लिया। इस कहानी का उन पर गहरा असर था। उन्होंने अपनी पत्नी को भी ये कहानी सुनाई और अपनी दोस्त लड़की को भी। एक बेचैनी के साथ इस कहानी को बार बार पढ़ते रहे। जब 3 बार पढ़ चुके तो उन्हें एक बेचैन सपना आया और वो उन्होंने लिखकर मुझे दे दिया। वो सपना था, न जाने सवेरा था या संध्या थी, आकाश उजाले और अंधेरे के मेल में फैला हुआ था। मैं एक नदी की ओर खिंचा चला जा रहा था। इस नदी को मैं प्रतिदिन पार कर लेता था, पर उस दिन इस नदी के तट पर अपनी एक प्रेमिका को, जो विवाहित थी और बच्चों की माँ थी, देखकर घबरा सा गया। उस नदी को पार करने का मुझे साहस नहीं हुआ। शायद अचेतन मन में डूब जाने का भय समा गया था। मैं नदी के किनारे किनारे चलने लगा, पर उस समय सब ओर रेत ही रेत दिखाई देने लगी। उस रेतीले स्थल में 2 तंबू लगे हुए थे। मेरी आंखों के सामने तंबू के अंदर का दृश्य फैल गया। मैं देखता हूँ, इसमें एक पुरुष है जिसे मैं भली भांति पहचानता हूँ, जिसके भाव और विचार एक यंत्र की भांति मेरे अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं। उसके सामने 3 तरह के वस्त्र पहने हुए पर एक ही चेहरे की 3 युवतियाँ खड़ी हुई हैं। पुरुष परेशान सा हो गया क्योंकि उनमें से एक उसकी प्रेमिका थी। ये कैसी छलना है? वो इस चिंता में डूब गया। उसके आश्चर्य को देखकर उनमें से एक की आंखों में कंपन हुआ और वो आगे बढ़कर उस पुरुष की बाहों में आ गई। ठीक इसी समय दूसरे तंबू में से एक व्यक्ति क्रोध से बोलता हुआ आया और उस लड़की को बुरा भला कहने लगा, तू इस बंधन में क्यों बंध रही है? ये पुरुष तो विवाहित है, ये तो एक भंवरा है। लड़की ने तुरंत उत्तर दिया, मैं ये सब कुछ जानती हूँ, फिर भी इसे अपना रही हूँ। इतने में देखता हूँ कि दूसरे तंबू से आए हुए व्यक्ति का सिर धड़ से गायब हो गया। पहले पुरुष ने उस लड़की को सो उत्साह अपनी बाहों में कस लिया और उस समय अचानक मुझे लगा कि मैं जो अदृश्य हूँ और वह जो सिरहीन व्यक्ति है और वो पुरुष जो पूर्ण रूप से वहां था, तीनों मुझ में समाये जा रहे हैं। अचानक आंख खुली तो देखता हूँ कि अमृता प्रीतम का कहानी संग्रह एक शहर की मौत मेरे पास खुला पड़ा हुआ है, जिसकी एक कहानी अदालत में 3री बार पढ़ते पढ़ते सो गया था। सायमी धूसवा। यूँ तो अपनी हर कहानी के पात्र के साथ मेरा साझा है। कहानी लिखते समय मैं उसकी पीड़ा अपने दिल में झेलती हूँ। उसकी होनी कुछ देर के लिए मेरी होनी बन जाती है और इस प्रकार ये सांझा शाश्वत का एक टुकड़ा बन जाता है। परंतु धूसुआ जैसे पात्र मुझमें केवल प्यार और सहानुभूति ही नहीं अपने लिए आदर भी जगा लेते हैं।
ये था अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट का
भाग 17।
वाचन स्वर सुखनंदन पिंद्रा का था।